ये आकाशवाणी दिल्ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। कहा, उनकी सरकार के विकास मॉडल में राष्ट्र प्रथम, ये तुष्टिकरण पर नहीं बल्कि संतुष्टिकरण पर केंद्रित। राज्यसभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को होने वाली मतगणना की तैयारियां जोरों पर। हरियाणा के फरीदाबाद में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कल से शुरू होगा और 11वां पद्मश्री श्यामलाल मेमोरियल हॉकी टूर्नामेंट दिल्ली में 10 से 17 फरवरी तक होगा। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार के विकास के मॉडल में राष्ट्र प्रथम है और ये तुष्टिकरण पर नहीं बल्कि संतुष्टिकरण पर केंद्रित है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का उत्तर देते हुए राज्यसभा में ये बात कही।
2014 के बाद देश दूसरी बार तीसरी बार हमें सेवा करने का मॉडल बनाती है। उसका कारण देश की जनता ने हमारे विकास के मॉडल को परखा है, समझा है और समर्थन दिया है।
प्रधानमंत्री ने कांग्रेस की आलोचना करते हुए कहा कि शासन का सबका साथ सबका विकास का मॉडल कांग्रेस नहीं समझ सकती क्योंकि ये एक परिवार को समर्पित पार्टी है। श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने कौशल विकास, वित्तीय समावेशन और औद्योगिकीकरण को प्राथमिकता का क्षेत्र माना है। उन्होंने दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए सरकार के प्रयासों का भी उल्लेख किया। प्रधानमंत्री के उत्तर के बाद राज्यसभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया। बाद में राज्यसभा को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि अवैध नागरिकों को स्वदेश भेजने की प्रक्रिया अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में सामान्य सिद्धांत है। डॉक्टर जयशंकर ने अमरीका से भारतीय नागरिकों को वापस भेजने के बारे में आज राज्यसभा में ये बात कही। विदेश मंत्री ने कहा कि ये देशों के सामूहिक हित में है कि वे वैधानिक आवागमन बढ़ाएं और अवैध आवाजाही को हतोत्साहित करें।
It is in our collective interest to encourage legal mobility and discourage illegal movement. It is the obligation of all countries to take back their nationals if they are found to be living illegally abroad. This is naturally subject to an unambiguous verification of their nationality.
विदेश मंत्री ने बताया कि अवैध नागरिकों को वापस भेजने की प्रक्रिया कोई नई बात नहीं है। विदेश मंत्री के बयान पर कांग्रेस के रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पूछा कि कितने भारतीय नागरिक अमेरिका की जेलों में बंद हैं और उन्हें कोई कानूनी सहायता प्रदान की गई है या नहीं। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने कहा कि वापस भेजे गए ऐसे लोगों के बारे में क्या नीति बनाई गई है। इससे पहले डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि विदेशों में पढ़ रहे भारतीय विद्यार्थियों की सुरक्षा और उनका कल्याण सरकार की प्राथमिकता है। राज्यसभा में उन्होंने कहा कि सरकार ने युद्धग्रस्त क्षेत्रों से स्वदेश लौटे भारतीय विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए हैं।
The government carefully monitors the number of students in all foreign countries. Wherever there is a situation of any tension or likelihood of violence, we alert students as we had done in Ukraine. We are prepared. We always have contingency plans.
Dr. Jaishankar ne kaha ki sarkar sanghars wale deshon se saikdon vidyarthiyon ko swadesh wapas lai hai. उन्होंने कहा कि सरकार ने चिकित्सा विद्यार्थियों को अपने शैक्षणिक पाठ्यक्रमों को किसी तीसरे देश में स्थानांतरित करने की अनुमति दे दी है और प्रायोगिक परीक्षाओं की सुविधा भारत में ही उपलब्ध कराई गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कल हुए शांतिपूर्ण मतदान के बाद सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित रखा गया है। निर्वाचन आयोग और पुलिस अधिकारी इनकी निगरानी कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
दिल्ली विधानसभा चुनाव के मतों की गिनती के लिए 11 जिलों में 19 मतगणना केंद्र बनाए गए हैं। 70 सीटों के लिए 699 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला शनिवार को होगा। इस चुनाव के लिए कुल 60.42% मतदान हुआ। विधानसभा चुनाव के प्रमुख उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी के प्रवेश वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, अरविंद सिंह लवली और रमेश बिधोड़ी तथा आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, आतिशी और मनीष सिसोदिया शामिल हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, संदीप दीक्षित और अलका लांबा प्रमुख चेहरे हैं। प्रादेशिक समाचार के लिए सुमित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं कनकलता।
विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को होने वाली मतगणना के लिए सभी तैयारियां जोरों पर हैं। दिल्ली की मुख्य निर्वाचन अधिकारी आर एलिस बाज ने बताया कि सुचारू और निष्पक्ष मतगणना के लिए सभी प्रबंध कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि आज सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों के फॉर्म 17C समेत चुनाव दस्तावेजों की जांच की गई। निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि जांच के दौरान चुनाव आयोग द्वारा की नियुक्त केंद्रीय पर्यवेक्षक, उम्मीदवार और उनके एजेंट तथा रिटर्निंग अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जांच प्रक्रिया के दौरान उन्हें किसी भी उम्मीदवार से कोई शिकायत नहीं मिली है। सभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को स्ट्रांग रूम में सुरक्षित तरीके से रखा गया है। दिल्ली में 19 स्थानों पर एक एक विधानसभा क्षेत्र के लिए कुल 70 स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं। विधानसभा चुनाव में लगभग 60.54% मतदान हुआ। सबसे अधिक 66.25% मतदान उत्तर पूर्वी दिल्ली और सबसे कम 56.40% मतदान दक्षिण पूर्वी दिल्ली में हुआ। शाहदरा जिले में मतदान का प्रतिशत 63.99% रहा। वहीं मतदान प्रतिशत मध्य दिल्ली में 59.12, पूर्वी दिल्ली में 62.49, नई दिल्ली में 57.23, उत्तरी दिल्ली में 59.16 और उत्तर पश्चिम दिल्ली में 60.71% रहा। इसके अलावा दक्षिणी दिल्ली में 58.20, दक्षिण पश्चिमी दिल्ली में 61.33 और पश्चिमी दिल्ली में 60.98% मतदान रहा। विधानसभा चुनाव पर मतदान बाद सर्वेक्षणों से राजधानी में राजनीतिक दलों के बीच आशा और तनाव बढ़ गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख नेताओं ने सर्वेक्षणों पर प्रसन्नता व्यक्त की है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम का सम्मान किया है और वो स्थानीय व्यवस्था में परिवर्तन चाहती थी।
उम्मीद करता हूं कि एग्जिट पोल में बदलेंगे और दिल्ली की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के काम को सम्मान किया है। दिल्ली की जनता व्यवस्था परिवर्तन चाहती थी और उस परिवर्तन के लिए दिल्ली की जनता ने वोट किया है, तो परसों का परिणाम आने दीजिए। मुझे लगता है ये टिप्पणी गैर जरूरी है। संवैधानिक संस्थाओं पर इस तरह की टिप्पणी वो लोग करते हैं जिनका लोकतंत्र में विश्वास खत्म हो गया।
सर्वेक्षण में पीछे होने के बावजूद आम आदमी पार्टी अपनी जीत का दावा कर रही है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और ग्रेटर कैलाश से उम्मीदवार सौरभ भारद्वाज ने कहा कि भाजपा अगर परिणाम आने से पहले ही खुश है तो एग्जिट पोल के आधार पर अपना मुख्यमंत्री भी बना ले। उन्होंने कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी जिसे पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल चलाएंगे।
एग्जिट पोलों की सरकार से भारतीय जनता पार्टी खुश है तो अपनी सरकार बना ले, एग्जिट पोल के ऊपर अपना एक मुख्यमंत्री भी बना ले, कुछ मंत्री भी बना ले। एक दिन और एग्जिट पोल की जो है उम्र है, परसों जो है असली पोलों के फैसले आ जाएंगे और फिर अरविंद केजरीवाल को ही मुख्यमंत्री बनना है, आम आदमी पार्टी की सरकार बननी है।
इस बीच कांग्रेस भी सर्वेक्षण में अपना खाता खोलती नजर आ रही है। इस पर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि कांग्रेस अब भी मानती है कि चुनाव के नतीजे लोगों को चौंका सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी पर उनके विधायकों को खरीदने का आरोप लगाया। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने दावा किया कि भाजपा ने अब तक उनके 7 विधायकों को 15 करोड़ रुपए का प्रलोभन देकर भाजपा में शामिल होने का प्रस्ताव दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने श्री सिंह के बयानों पर कानूनी कदम उठाने की बात की है। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि संजय सिंह अपना आरोप वापस लेकर भाजपा से माफी मांगे या कानूनी नोटिस के लिए तैयार रहें। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व पुस्तक मेला जारी है। बड़ी संख्या में पुस्तक प्रेमी मेले में पहुंच रहे हैं। इस वर्ष मेले का विषय हम भारत के लोग हैं, जो भारत गणराज्य के 75 वर्ष पूरे होने के उत्सव को दर्शाता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस बार पुस्तक मेले में 50 से अधिक देशों के करीब 2000 प्रकाशक भाग ले रहे हैं।
इस वर्ष रूस के फोकस राष्ट्र होने के अलावा मेले में इटली, फ्रांस, कतर, संयुक्त अरब अमीरात, स्पेन, सऊदी अरब, कोलंबिया और तुर्की जैसे कई देशों की भागीदारी देखी जा रही है। विश्व पुस्तक मेले में शैक्षणिक किताब, उपन्यास और प्रसिद्ध हस्तियों के जीवन पर प्रकाशित किताबों के स्टॉलों पर भारी भीड़ देखने को मिल रही है। इसके अलावा बच्चों के लिए विशेष तौर पर बनाए गए पवेलियन में भी माता पिता अपने बच्चों के साथ किताबों की खरीदारी कर रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में माई निचिकेता प्रकाशन के पीयूष अग्रवाल ने बताया कि उनके स्टॉल पर बच्चों के लिए उपलब्ध ऐसी किताबें हैं जिनके द्वारा बच्चों को सरल शब्दों में गीता, वेदों और उपनिषदों के पाठ पढ़ाए जा सकते हैं।
हम लोग बुक्स लिखते हैं बच्चों के लिए। जो आजकल के बच्चे हैं उनको फिलोसॉफिकल एस्पेक्ट नहीं समझ पाते कि रामायण में क्या हुआ था, श्लोका सुनते हैं है पर उसका सही मीनिंग वो अपने लाइफ में अडाप्ट नहीं कर पाते। तो हमारा मेन गोल यही है कि बच्चे जो हमारी गीता, वेदांत, उपनिषद की फिलोसफी समझे एंड उसको अपने लाइफ में यूज करे।
नजफगढ़ के राजकिशोर प्रसाद ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि वह हर वर्ष इस मेले का इंतजार करते हैं जहां उनके स्वयं की और उनके बच्चों की पसंद की किताबें उन्हें हमेशा मिलती है।
जब भी बुक फेयर लगता है प्रगति मैदान में यहाँ आता हूँ और कुछ कुछ अपनी पसंद की बुकें, मेनली लिटरेचर है, सारे ले जाता हूँ और ये मेरे को हमेशा अच्छा लगा है और मैं ये इंतजार करता रहता हूँ कब बुक फेयर लगे और मैं आऊँ।
9 दिवसीय यह पुस्तक मेला भारत मंडपम के हॉल 2 से लेकर 6 में सुबह 11 बजे से रात 8 बजे तक आयोजित है। मेले की टिकटों की बिक्री भारत व्यापार संवर्धन संगठन ITPO ऑनलाइन कर रहा है। टिकट NBT इंडिया की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है तथा स्कूल छात्रों, वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांग जनों के लिए प्रवेश निःशुल्क है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदर्श, दिल्ली।
हरियाणा के फरीदाबाद में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेला कल से शुरू होगा। इस बार मेले में ओडिशा और मध्य प्रदेश प्रमुख राज्य हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि बिम्स्टेक देश, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड की कंपनियां अपने अपने उत्पाद प्रदर्शित करेंगी।
मेले में हस्तशिल्प के साथ साथ हाथों से बुने वस्त्र, खिलौने और आभूषण हर वर्ष लोगों का सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं। इसके अलावा यहां सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन होगा जिसमें प्रसिद्ध राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय लोक कलाकार तथा सांस्कृतिक समूह मेला परिसर में स्थित चौपालों जो ओपन एयर थिएटर है उनमें दिन भर प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा शाम को मुख्य चौपाल में मंत्रमुग्ध कर देने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम को आयोजित किए जाएंगे। मेले में मौजूद फूड कोर्ट में दुनिया भर के विभिन्न संस्कृतियों के पारंपरिक व्यंजन उपलब्ध होंगे। यह मेला सूरजकुंड मेला प्राधिकरण और हरियाणा पर्यटन द्वारा केंद्रीय पर्यटन, वस्त्र, संस्कृति और विदेश मंत्रालयों के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। मेले के लिए टिकट मेला स्थल पर निर्धारित काउंटरों तथा दिल्ली मेट्रो के ऐप दिल्ली सारथी 2.0 पर उपलब्ध हैं। मेले से जुड़े हर पहलू की जानकारी सूरजकुंड मेले की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध है। मेले का आयोजन 7 से 23 फरवरी के बीच सूरजकुंड परिसर में किया जाएगा। आदर्श की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए सकलैन अख्तर।
11वां पद्मश्री श्यामलाल मेमोरियल आमंत्रण हॉकी टूर्नामेंट 10 से 17 फरवरी तक आयोजित होगा। इसमें दिल्ली विश्वविद्यालय की शीर्ष टीम पुरुष और महिला वर्ग में खेलेंगी। पुरुष वर्ग में 10 टीम तथा महिला वर्ग में 6 टीम हिस्सा लेंगी। शीर्ष पर रहने वाली 2 टीम के बीच फाइनल खेला जाएगा। पिछले वर्ष पुरुष वर्ग में श्यामलाल कॉलेज और महिला वर्ग में इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइंस की टीम चैंपियन रही थी। दिल्ली में आज दोपहर के समय धूप खिलने से मौसम सामान्य रहा और दिन भर तेज हवाएं चली। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान सामान्य से 0.3 डिग्री अधिक 23.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 1.2 डिग्री कम 8.2 डिग्री सेल्सियस रहा। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। वहीं सुबह के समय हल्की धुंध और दिन में 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब दिया। कहा, उनकी सरकार के विकास मॉडल में राष्ट्र प्रथम, ये तुष्टिकरण पर नहीं बल्कि संतुष्टिकरण पर केंद्रित। राज्यसभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए शनिवार को होने वाली मतगणना के लिए तैयारियां जोरों पर। हरियाणा के फरीदाबाद में 38वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला कल से शुरू होगा और 11वां पद्मश्री श्यामलाल मेमोरियल आमंत्रण हॉकी टूर्नामेंट दिल्ली में 10 से 17 फरवरी तक आयोजित होगा। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।